Om Shanti. Good morning. आज की मुरली शिव जयंती की है. आज बाबा से मिलन है शिव जयंती के उपलक्ष में. तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पर लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं ना, तो क्यों देते हैं? अच्छा, जन्म हो गया तो फिर क्या, बधाई किस लिए? हम शिव बाबा को बधाई देते हैं, शिव बाबा हमको बधाई देते हैं, तो बधाई शिव बाबा को क्यों देने की जरूरत है? शिव बाबा को चाहिए क्या बधाई? शिव बाबा तो शिव बाबा ही है. ये बहुत इंटरेस्टिंग सोचने की बात है. लेकिन आज बाबा ने बताया है कि बाबा कब आते हैं, कब आते हैं, यानी बाबा का जन्म, दिव्य जन्म कब होता है. कुछ बातें ऐसी बाबा ने आज सुनाई कि जब महाभारत लड़ाई क्लियर सामने दिखाई देती है तो भगवान का अवतरण होता है, और वो दिखाई दे रही है ना अभी. भगवान तब दुनिया में आते हैं क्योंकि वो पतित पावन है, तो जब सब पतित बन जाते हैं तब आते हैं. क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है, तो जब सब दुखी हो जाते हैं वो तब आते हैं. तो इसलिए जब शिव जयंती पर हमको कहीं पर सेवा करनी है तो ये सब पॉइंट्स अपनी बुद्धि में रखने चाहिए कि भगवान दुनिया में कब आते हैं. जब वो स्वर्ग का रचयिता है, उसको लोग हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो जरूर जब दुनिया नर्क बन जाती है भगवान तब आते हैं. अंत में जब पहुंचता है सृष्टि का चक्र तब आते हैं, क्योंकि उन्हें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाना है. तो ऐसे ऐसे आज शिव जयंती के कनेक्शन में कुछ पावन पॉइंट्स दिए हैं. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कुछ शब्द ऐसे हैं, माना कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हर लैंग्वेज में नहीं होते हैं. उनमें से एक शब्द है द, दूसरा है ड. हिंदी में दोनों होता है, दादा और डांडा. अब इंग्लिश में द शब्द है नहीं अक्षर. हम लोग कहते हैं बाप दादा, वो कहते हैं बाप डाडा, डाडा ही बोलते हैं. तो डा, और रशियन में ड शब्द है नहीं, वहां केवल द है. लेकिन बाबा ने आज दोनों ही शब्द यूज किए हैं, दादा भी और डाडा भी. अब ट्रांसलेशन वाले क्या करेंगे ये सोचना पड़ेगा. तो लेकिन तो दादा जो शब्द है हिंदी के हिसाब से वो ग्रैंडफादर है, बंगाली के हिसाब से दादा मना बड़ा भाई है, और सिंधी के हिसाब से भी दादा मना बड़ा भाई है, और डाडा सिंधी के हिसाब से ग्रैंडफादर है जो हिंदी के हिसाब से दादा है. तो अब इस बात को समझना है, तो आज ये इसका भी खेल है इन शब्दों का भी. तो ये बाप दादा है या बाप डाडा है, शिव बाबा डाडा है कि दादा है, और ब्रह्मा बाप है कि दादा है ना. तो ये भी हमको बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग रूप से समझाया है आज की मुरली में. तो अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 14 फरवरी, आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है, तो हमारे लिए तो हर दिन वैलेंटाइन डे है। बाबा के प्यार में है हम सभी, तो उसकी भी सभी को बधाई है। तो आज है 14 फरवरी, मुरली का सार है मीठे बच्चे। मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। हमें क्यों बधाइयां मिलती हैं उसका कारण है ये, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? क्यों सतयुग में क्यों नहीं? तो उत्तर क्या है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? तो वहां कोई पतित है ही नहीं, बाबा कहे मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं, है ही तो कोई समझ में ही नहीं आएगा ना, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल, जब तक चक्र अंत ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो बधाई। सबको मिल गया तीसरा नेत्र? किस किस को मिला जरा हाथ खड़ा कीजिए। वाओ, ये भाइयों को नहीं मिला? मिला है, ठंड लग रही है। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ओम शांति, ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो क्या मुरली पढ़ के आए? आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो और बोलिए गीता जयंती, और सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। संगम युग की भी जयंती है, बाबा आए और संगम युग शुरू हुआ। तो आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स नहीं दे सकते, बहुत हैं जिनको शिव बाबा जन्म सिद्ध ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। क्यों? बहुत हैं जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना है, तो वो ग्रीटिंग्स क्या समझ सकेंगे, बधाई दें तो क्या समझ सकेंगे। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके, नए माना जिन्होंने अभी कोर्स नहीं किया, बच्चे तो वो भी हैं, नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था, और यहां बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, करते हैं ना जन्माष्टमी पे, यहां बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात नहीं। तो चलो मनोरंजन है, परंतु बाबा कहते मुख्य है ज्ञान की डांस, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे, राधा कृष्ण और गोप गोपियां सभी वहां पर डांस करेंगे प्रिंस प्रिंसेस के साथ। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है, ये बाप दादा है, दादा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। ये दादा, अब ये वाला दादा, ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर है दादा, वैसे दादा ग्रैंड फादर है, पर ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहां तो वंडरफुल बात है, वो दादा है रूहानी और ये दादा है जिस्मानी। समझना पड़ेगा ना कौन से दादा की बात हो रही है। ये वो दादा है रूहानी और ये है जिस्मानी, और लेकिन इनको इकट्ठा कहते हैं बाप दादा। तो यहां तो ये वंडरफुल बात है, बाप से दादा द्वारा, अब यहां बड़ा भाई हो गया, बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का, अब वो डाडा हो गया, वर्षा है डाडे का माना ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से, अब वो बाप है, सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे तो निराकार कहते हैं, तो जरूर मुझे शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं शरीर के द्वारा। तो बाप दादा के द्वारा पहले ज्ञान का वर्षा देते हैं, ठीक है ना, तब तो राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, या और तीसरी बात, मूत पलीती कपड़ धोऊं। मूत पलीती कपड़ धोऊं, तो जरूर जरूर वो कोई बड़ा धोबी होगा। हाँ, इतना बड़ा धोबी होगा तो सबके कपड़े धोते हैं, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है, ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। अच्छा, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं, ऐसा ही है, जानते हो कि हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं। तुम उनको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सो रहे हैं वो बताइए, क्योंकि हमको बाबा क्यों ग्रीटिंग्स देते हैं? बताइए बताइए, देखिए आपके पड़ोस में कोई सो तो नहीं रहा, जरा चेक कर लीजिए, उनको उठा दीजिए, राइट लेफ्ट, हाँ देख ले। तो बाबा क्यों ग्रीटिंग्स देते हैं? क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, ग्रीटिंग्स के पात्र हैं। तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। आगे सुनिए, देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। चढ़ता है नशा? देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने कल क्या कहा था? है तो वो देवताओं से हम ऊंचे, मगर हमारा सब कुछ गुप्त है, बाहरी शान शौकत ठाट, हाँ वो सब नहीं। देवताएं तो बहुत सुंदर सजे हुए हैं, हम सिंपल हैं। परंतु बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं। ऊंच से ऊंच है बाप। फिर वो आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं कौन? उसके नीचे हैं देवताएं, लेकिन सबसे ऊपर है बाबा। ये बहुत जरूरी है कि कहीं अभिमान नहीं आ जाए। हम देवताओं से ऊंचे भी हो, लेकिन मेरे से ऊपर कोई और है। तो बाबा क्या कहते हैं, ऊंच से ऊंच है बाप। फिर वो आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, लेकिन सबसे ऊपर है बाबा। सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है। तो इसलिए मन से बाबा का शुक्रिया निकलता ही रहता है। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है। किस लिए? स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहां तो एक ही मनुष्य के दोनों नाम रख देते हैं, एक ही का नाम लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण नाम रख देते हैं, तो चतुर्भुज हो गए ना। अब बाबा बताते हैं वह विष्णु, बहुत सारी आज ज्ञान की एक एक लाइन में पॉइंट है, वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का। वह विष्णु जो चतुर्भुज है वो तो है सूक्ष्म वतन का। वो क्या है? वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, वो विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का, वो है एम ऑब्जेक्ट। चार भुजाओं वाला व्यक्ति तो कोई होता नहीं है ना, वो है एम ऑब्जेक्ट। चार अलंकार माना चार सब्जेक्ट्स, तो वो है एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के, फिर नीचे जब लक्ष्मी नारायण होंगे, तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। हाँ, वंडरफुल बात है। विष्णु चार भुजा वाला साकार में नहीं होता है, लेकिन स्वर्ग विष्णुपुरी कहलाता है, क्योंकि विष्णु एम ऑब्जेक्ट है और उसी से ही शब्द वैष्णव निकलता है। तो बाबा कहते हैं तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की हैं चार भुजाएं, दो लक्ष्मी की और दो नारायण की। तुम कहेंगे कि हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, अब बाबा ने देखा चंद्रराज दादा की तरफ और कहा बाप की महिमा का गीत सुनाओ। हाँ जी भाई जी, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। कौन सा गीत सुनाइए? हाँ, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। चलिए बाद में एक बार ये और आएगा, तब तक आप सेट कर लीजिए। तो वहां तो चंद्रहास दादा ने फौरन लगा दिया है ना। तो अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। तो गीत बजा, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अब बाबा कहते हैं सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक किसी की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक, तो सबसे ऊंचा कौन है? बाबा। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक किसी की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबर वार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। अच्छा, ईश्वर तो स्वर्ग रचयिता है, वो तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहां जन्म है, वो नरक में ही आते हैं। ईश्वर का यहां जन्म है। क्रिश्चियंस कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, परंतु भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। भगवान यहां आते हैं ना भारत में, तो भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहां ही आते हैं, बच्चों को अपना बनाए फिर से राज्य भाग्य देने के लिए। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं। कोई है जो पहली बार आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो जरा हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। देखें कितने हैं। अच्छा, ताली बजा दीजिए भाई। बाबा आज इनके साथ सबके लिए समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं। बाबा को ख्याल सबका रहता है ना, इनके लिए ऐसे ही मतलब समझा दें तो समझना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी तो बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, फिर उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहां स्थापन हो रही है। यह तो और किसी को मालूम नहीं है। हाँ, तो इसीलिए लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते क्या हैं, समझ ही नहीं आता है। उनको कहें कि हम अपनी स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ये तो और किसी को मालूम नहीं है कि सारी राजधानी यहां स्थापन हो रही है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को है नहीं। गीत बजा, फिर गीत बज गया। कौन सा गीत? की महिमा सुनी, सुनी क्या सुना? कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अभी बाप की महिमा सुनी, वो है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, सिवाय लक्ष्मी नारायण के किसी का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं था। कल बाबा ने कहा ना, अटल, अखंड और अडोल, कोई खंड नहीं था। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे उनका पूरे विश्व पर राज्य था। लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए, जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। जरूर कहेंगे पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा। किसी के पास बहुत धन है, किसी को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो ना? बाबा हमको भी इसलिए कर्मों पर ध्यान खिंचवाते हैं। कर्मों को तो मानते हो ना? कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। तो पूरा गीत आज सुन लीजिए, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है, कहाँ आया है बाप, अब बाप कहाँ आया है, समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो युद्ध के मैदान में आया है। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे से मीठा बाबा समझाते हैं। उनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करे सुख में करे ना कोई, शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया था तो भारत को स्वर्ग बनाया था, अब तो नर्क है। इसलिए फिर से बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं, कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो, तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब अगली बात और क्या बाबा समझाते हैं ज्ञान की, जहां हम आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। जहां हम आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम, बाप भी वहां रहते हैं, तुम आत्माएं और हम, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं और हम वहां रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पार्ट बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, मैं नहीं लेता हूं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं तब आता हूं, कब? मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं, मैं तब आता हूं, कब? जब सब पतित हैं, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बहुत पूछते हैं कि पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, दुनिया कैसे शुरू हुई, पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आ गया। कहां से आ गया? जादू से तो नहीं आ गया ना, बच्चा श्री कृष्ण आ गया। बाप क्या कहते हैं, कैसे रची? बाप क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात क्या है, ये बेहद का ड्रामा है, ये ड्रामा चक्र लगाता रहता है, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। तो बाबा आते हैं जब कलयुग अंत होता है, उसे सतयुग बनाने, इसको ही रचना कहा जाता है। सिर्फ ये बात है, वो कोई बात नहीं है। सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया, तो बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत् त्वम्, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वो थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं, इसी को ही रचना कहते हैं ना। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप तुमको संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे, जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई ही नहीं, तो उसका समाचार कैसे सुनाएं? मैं आता हूं, कब? मैं आता हूं अंत में।
मैं आता हूँ अंत में कल्प के संगम युगे, और शास्त्रों में लिख दिया है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया है। अब सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वो है सब आत्माओं का बाप, बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो बच्चों को मिलता है। तो सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है, तो फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सब आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि सबको दुख है, इसलिए याद करती हैं बाबा आओ, आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। अब सब दुर्गति में है, तो बाबा कब आते हैं? जब सब दुर्गति में है और फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। तो अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो अब तुम बच्चों को मैं सारा राज समझाता हूँ। शिव रात्रि कब हुई? तो कितनी सारी पॉइंट्स हैं। शिवरात्रि, शिव जयंती, शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए ना? क्या हुआ जो शिव बाबा आया? क्या हुआ शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारस पुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं, उनको वर्षा भगवान ने दिया फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं आता हूँ और यज्ञ रचता हूँ। इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ से फिर विनाश ज्वाला निकलती है। इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो सब मैटीरियल यज्ञ होते हैं और ये है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा कहते हैं मैं कोई अकेला थोड़े ही आता हूँ, मैं कोई अकेला थोड़े ही आता हूँ। किसके साथ आते हैं बाबा? किसके साथ, किसके साथ आते हैं? बताइए बताइए। हाँ, कुछ क्लियर नहीं हुआ, जोर से थोड़ा बोलिए। एक जना उठ के, किसके साथ? ब्रह्मा के साथ। मैं कोई अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए ना, ब्रह्मा तन में आना पड़े। तो शिव जयंती और ब्रह्मा जयंती, और फिर ब्राह्मण जयंती, गीता जयंती, उससे पहले शिव जयंती, ब्रह्मा जयंती, गीता जयंती, ब्राह्मण जयंती। तो मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए, ब्रह्मा तन में आना पड़े और पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर उसके बाद वो हो गया उधर, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। तो यहाँ ब्रह्मा जयंती, तो ये तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है, सब पुकारते थे, अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप है तो जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे ना। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ये पाठशाला है, भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की, तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। 21 पीढ़ी माना वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, तो 21 जन्म नहीं 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होता नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, सर्प का भी मिसाल है ना। तो तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं, तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो, चक्र तो फिरता है। ये तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर ये प्रायः लोप हो जाता है, ये ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है, सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। देवता बन गए तो सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती, अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सर्व का सतगुरु एक ही बाप है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से किसी की सदगति नहीं होती, सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है, ड्रामा अनुसार उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। तो कल बाबा ने कहा ज्ञान की प्रारब्ध चढ़ती कला, नीचे गिरे फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है, अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, क्यों? बाबा का बर्थ प्लेस है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, बाप का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता, वो अविनाशी बाप है, तो इसलिए उनका जन्म स्थान भी अविनाशी है। बाप का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता, तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे और आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो, तो यह है रौरव नरक, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है, खूने नाहक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे, तुमने क्या गुनाह किया, नाहक सबका विनाश हो जाएगा, विनाश का साक्षात्कार भी बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। इनमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो फिर भविष्य में ही जाएंगे। छीछी दुनिया में तो स्वर्ग होता नहीं। छीछी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। मैं तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऑलरेडी काफी तकलीफ हो गई तो बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। और हमसे ऊंचा कौन है? बाबा है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा है, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। शिव जयंती पर बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भाव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भाव। अब उसका बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया है। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हैं तो कई क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं और सहज बात कोई सहज सिचुएशन भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जब विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं बातों को उठा लेते हैं तो बाप को किनारा कर देते हैं। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वे बाप को किनारे कर देते हैं
और रिजल्ट क्या होता है, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें खुद फंसते जाते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें खुद फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपको तो ज्ञान का नेत्र मिला है ना, तो उसमें आर्टिफिशियल अट्रैक्शन में मत जाओ। बातों में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उन रंग बिरंगी बातों से किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज का अव्यक्ति इशारा, अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के किसी भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के किसी भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते, भाषण नहीं कर सकते, कोर्स नहीं करा सकते, ज्ञान नहीं समझा सकते, अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाएं। कहां जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। मन से वातावरण, वृत्ति से स्थिति से वातावरण बनाओ। कहां जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। परंतु लक्ष्य क्या है, सेवा में सहयोगी जरूर बनो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। तब सबके सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे बीच आज रशिया की सुधा बहन आए हैं, हम उनका करतल ध्वनि से धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू।
आप देखते हैं रशिया से कितने भाई बहनें आते हैं मधुबन में, और हमारी सुधा बहन से तो हम चाहेंगे कि हम कुछ सुने, लेकिन समय का अभाव है। फिर भी यदि हम चाहेंगे 2 मिनट परिचय अपना दीजिए, क्योंकि कई नहीं जानते हैं। जो सुधा बहन को नहीं जानते हैं हाथ उठाएं, देखो कितने हाथ उठा रहे हैं। 2 मिनट में फिर परिचय, और कुछ नहीं, नहीं तो सुनना तो बहुत चाहेंगे हम। रशिया का कितना समाचार सुनते रहते हैं, लेकिन अब वो तो समय नहीं है।
मैंने ज्ञान दिल्ली से लिया 1968 में, और बहुत ये बात जरूर कहने की है कि बहुत सौभाग्य की बात, में बाबा ने कहा तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण हो, तो मैं समझती हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली, क्योंकि जिस सेवा केंद्र पर मैंने जन्म लिया 1968 में, वो दुनिया का पहला केंद्र है, और मधुबन के बाद,
और वहां सब बाबा मम्मा दादियां सब 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 सबने अपनी शक्तियों से उसको भरपूर किया। और जब मैं आई थी तब वहां गुलजार दादी, जगदीश भाई साहब और चक्रधारी दीदी रहते थे, और भी थे दो तीन भाई, क्योंकि वहां पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी था। और तो उनसे ही ज्ञान सुनकर हमारा अलौकिक जन्म हुआ, पालना मिली, सेवा भी वहीं पर ही शुरू की। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री इन साइंस लिया, तो दोनों पढ़ाइयां साथ साथ चली। जब मैं स्कूल में थी तब ज्ञान में आई, और फिर उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन वो डिग्री भी लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और लेकिन एजुकेशन पूरी होने के फौरन बाद ही डेडिकेट कर दिया अपने आप को, क्योंकि लक्ष्य यही था। तो लंबी स्टोरी है। और उसके बाद 1989 में जब सेवाएं, फॉर्मर सोवियत यूनियन था तब, ये तब अभी डिवाइड नहीं हुआ था, तो हम तब वहां पर इनविटेशन पर गए थे 10 दिन के लिए। 10 दिन का ही इनविटेशन था, लेकिन वो 10 दिन 36 साल में बदल गए। और अभी 36 साल पूरे हो गए और अभी 37th ईयर चल रहा है। और इस समय रशिया और उसके आसपास के जो देश हैं जो सोवियत यूनियन में थे तब, तो उसमें बाबा के सेंटर्स हैं, सबसे ज्यादा रशिया में हैं। और वैसे भी रशिया बहुत बड़ा देश है, और सब मिलाएंगे तो 70 के करीब सेंटर्स हैं, 70। और तो सब, और ये भारत से तो केवल हम तीन ही लोग हैं वहां, मैं हूँ, संतोष बहन हैं और विजय भाई हैं। चक्रधारी दीदी आते हैं हर साल 1 महीने के लिए, पहले वो ज्यादा आती थी, अभी कम आ पाती हैं। लेकिन शुरू शुरू में मेरे ख्याल से कोई भी शायद दादी नहीं है जो वहां नहीं आए, सब बड़े वहां पर आए हैं। और सबसे ज्यादा तो जगदीश भाई साहब ने, जो वहां जो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग लगा और उन सब की पालना हुई पुराने भाई बहनों की, तो वो तो एक मतलब बड़ी जबरदस्त कहानियां हैं। और तो बाबा की सेवाएं ऐसे वहां शुरू होके अभी सेवाएं चलती जा रही हैं। और आप सबको जरूर प्रश्न यूक्रेन के बारे में भी होगा, और कोई भी दुनिया में कुछ भी हो, है ना, पॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी होता है, लेकिन हमारे मन में डिवीजन नहीं है। और अभी हमारी, हम लोग फिजिकली वहां नहीं जा आ सकते हैं, वो लोग रशिया नहीं आ सकते, हम लोग वहां नहीं जा सकते, लेकिन जो कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन और ऑनलाइन मीटिंग्स, वो होती ही रहती हैं। और बाबा के बच्चे सब सेफ हैं वहां पर भी, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं। वहां पे भी हमारा रिट्रीट सेंटर भी है वहां पे भी, और वो लोग मिलते हैं रिट्रीट सेंटर पर। कभी कभी लाइट नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, लेकिन फिर भी सब कुछ बाबा का कार्य चलता रहता है। और अभी भी दो बहनें वहां से आई हुई हैं, और वो मतलब सेवा केंद्र इंचार्ज नहीं है वो, लेकिन स्टूडेंट्स हैं, वो आई हुई हैं बहुत लंबा जर्नी करके। डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं अभी, तो बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं, तो इसलिए बाबा का कार्य चलता जा रहा है और सब बहुत अच्छा है। ओम शांति।
दूसरी खुशी की बात भी यही है, आज हम सभी बाप दादा से मिलेंगे शाम को, प्यारे बाप दादा का हम ट्रांसमिशन सुनेंगे। और जो मधुबन निवासी है, सेवाधारी है, वो तो सब यहाँ ही सुनते हैं। पार्टी में आए हुए तो जरूर नीचे जाएंगे। जो पार्टियों में आए हुए हैं वे सब हाथ उठाएं जो खास नीचे से आए हैं। हाँ, तो आप सबके नाश्ते का का प्रबंध ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, और जो भाई बहने यहाँ ठहरे हैं, नीचे नहीं ठहरे हैं लेकिन यहाँ ही ठहरे हैं, वे हाथ उठाएं। भारत वाले, भारत वाले जो केवल जो यहाँ ठहरे हैं, नीचे नहीं ठहरे, वे हाथ उठाएं। तो आप सबको अभी योग के बाद शशि बहन हिस्ट्री हॉल में सौगात देगी, और जो डबल विदेशी कल नहीं गए सौगात लेने, वो हाथ उठाएं। Those double foreigners who didn't go yesterday for taking Baba's gift from Baba's home, raise your hand. So please, you also go to history hall after meditation. और भी दूसरी खुशखबरी है, उस दिन तो हम सब ने 10 तारीख को शिव बाबा का झंडा लहराया वहाँ एरोप्लेन बिल्डिंग पर, लेकिन कईयों की रिक्वेस्ट थी कि हमेशा ओम शांति भवन में भी झंडा लहराते हैं, तो कल ये होगा। कल शिव बाबा का झंडा यहाँ जो बगीचा है वहाँ लहराया जाएगा। पहले मुरली के बाद भोग होगा, शिवरात्रि का भोग। वो भी पूछ रहे थे शिवरात्रि का भोग कब होगा, तो वो तो कल होगा क्योंकि दिन तो कल है, और उसके बाद झंडा रोहण भी होगा। और जो भी पांडव भवन में पार्टी में आए हुए भाई बहने ठहरे हैं, हाँ, तो वहाँ आपको सौगात मिलेगी। अभी 2 मिनट योग करेंगे सुदेश, 2 मिनट नहीं नहीं बस अभी योग करते हैं, फिर डबल विदेशियों से बैठे। तो अभी हम सब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने सभी बैठे रहेंगे, आपको आज का भी और भी प्रोग्राम है वो बताएंगे। All double foreigners will remain seated. After meditation, I will announce today's program and many instructions for double foreigners. Om Shanti. behind after announcements and meet Sabita Behen and Helen Behen at the sister side of Om Shanti Bhavan, who are a part of Shiv Shakti leadership approach. Any sisters who are part of it? Sabita Behen, stand up and have a look. Yeah, those sisters who are part of Shiv Shakti leadership approach. No one from here? No, there are two sisters here. This side. This side, this side. Okay, so please stay back after all the instructions. I will first of all announce today's program. Anybody from Australia here? Who's from Australia? Okay, this morning at 9:15, Brother Charlie is going to meet the group from Australia. So all those from Australia, please go to training center room number 1 of Gyan Sarovar at 9:15, where Brother Charlie will meet you. And then first timers, raise your hand. First timers, you must have registered.